निक ने अपने घर पर जैन और आलिया के साथ बैठकर खाना खाया था। प्रियल के बारे में सोचकर उसकी पलकें भीग गई थीं। उसने उन दोनों की नज़रों से छुपकर अपने आंसू पोंछ लिए थे। आलिया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था।
क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? आपका चेहरा क्यों लाल हो गया और आंखों में पानी? आलिया ने पूछा।
उसके कहने पर जैन का ध्यान भी निक की तरफ गया, जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था।
क्या हुआ भाई, आप रो रहे हो?
जैन ने पूछा। निक ने हंसते हुए कहा, आलिया खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है तुम दोनों ने, लेकिन ये बहुत स्पाइसी है। तुम लोग जानते हो ना, मुझसे तीखा नहीं खाया जाता।
मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ, कहते हुए आलिया जल्दी से किचन की तरफ गई और अपने साथ एक स्वीट डिश लेकर आई।
उसे खाते हुए निक ने कहा, थैंक्स। वैसे आलिया, मैं तुम्हें और तुम्हारे खाने दोनों को बहुत मिस करूंगा। मैंने बात कर ली है तुम्हारे अब्बू से? जैन ने हैरान होकर कहा।
भाई आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने किस बारे में बात कर ली अब्बू से, और आप क्यों मिस करोगे आलिया को, वो तो यहीं पर है।
आलिया ने भी चौंकते हुए कहा, हाँ भाई आप क्या बोल रहे हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा।
समझ तो तुम दोनों को सब कुछ आ रहा है, लेकिन शायद तुम दोनों मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम दोनों के बीच ये जो पिछले एक साल से चल रहा है, वो मुझे सब कुछ पता है। मैंने पहले इसलिए नहीं बोला कि तुम दोनों समझदार हो और संभाल लोगे अपने बीच के रिश्ते को, लेकिन शायद मेरी ही गलती है कि मैंने पहले कुछ नहीं बोला, वरना बात आज यहाँ तक नहीं आती, निक ने कड़े स्वर में कहा। निक की बातों से आलिया और जैन समझ गए कि उसे दोनों के बीच आ चुकी दूरियों का पता चल चुका है। जैन ने कहा, भाई हम दोनों भी कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। वो मैंने डिसाइड किया है कि हम दोनों इस रिश्ते से थोड़े टाइम का ब्रेक ले लें।
उसकी बात सुनकर आलिया ने उदास होकर कहा, ये प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं वापस लखनऊ चली जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मी अब्बू को इस बारे में कैसे बताऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ जो आपकी बात हो गई उनसे, निक ने कहा।
हाँ, उन्होंने दूसरा लड़का भी पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए, बस हम फ्री हो जाएं यहाँ से, साथ चलेंगे लखनऊ। सोच रहा हूँ अगर तुम्हें लड़का पसंद आ जाए तो तुरंत शादी का बोल दूंगा। अब तुम मुझे भाई बोलती हो तो वो सभी फर्ज निभाने होंगे ना।
दूसरा लड़का, शादी, क्या बोल रहे हो भाई आप ये? जैन ने हैरानी से पूछा।
निक ने कहा, तुम दोनों अलग होना चाहते हो ना? आलिया के डैड ने वैसे भी बहुत वेट कर लिया, वे अब तक बस मेरी वजह से रुके हुए थे, वरना आलिया की शादी तो कब की हो चुकी होती।
आलिया ने कहा, लेकिन भाई मैं जैन के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ। भले ही दूरियां आ गई हों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे।
एग्जैक्टली, यही तुम दोनों को समझना चाहिए कि भले ही दूरियां आ गई हों, लेकिन जरूरी नहीं कि दूर ही हुआ जाए। अभी भी वक्त है, अपने रिश्ते पर वर्क करो, कहाँ क्या कमी रह गई है ध्यान दो उस पर, वरना एक बार दूर हो गए तो। निक बोलते बोलते रुक गया। जैन ने कहा, भाई मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे और प्रियल को जरूर ढूंढ लेंगे। निक ने कहा, अच्छा है कि गुड़िया यहाँ पर नहीं है, वरना तुम दोनों के रिश्ते का ये हाल देखती तो उसे भी बहुत बुरा लगता। शायद हम दोनों के रिश्ते में दूरियां इस वजह से आ गई हैं कि हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, आलिया ने कहा।
निक ने कहा, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो ये मैटर नहीं करता आप एक दूसरे के साथ कितना टाइम बिताते हो। तुम्हें पता है आलिया, प्रियल और मैं शादी के बाद 13 महीनों तक एक साथ थे। अगर उन 13 महीनों में मैंने जितने दिन प्रियल के साथ बिताए थे, अगर उनको काउंट करूं तो मुश्किल से 5 महीने भी नहीं बनेंगे। लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की थी कि मैं उसे टाइम नहीं दे पाता। जितने टाइम साथ थे, बस उसी को एक दूसरे के लिए खास बनाया। बस वही तुम दोनों करो। देखो, लाइफ में ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि जिस दर्द से आज मैं गुजर रहा हूँ, उससे जैन या तुम गुजरो।
सॉरी आलिया,
जैन ने आलिया की तरफ देखकर कहा।
आलिया नहीं, आलू बोलो,
निक ने हंसते हुए कहा।
क्या भाई आप भी?
निक की बात सुनकर आलिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। निक ने कहा, चलो प्रॉमिस करो कि आज के बाद जो भी प्रॉब्लम होगी दोनों के रिश्ते में, वो आकर पहले मुझे बताओगे। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और एक दूसरे की कीमतों को एक्सेप्ट करना सीखो। निक उन दोनों से बात ही रहा था कि उसके पास रॉन का कॉल आया। निक फोन स्पीकर पर कर दिया। निक ने कहा,
हाँ रॉन, क्या हुआ?
रॉन ने कहा, पता है किचन में कुकर फटने से ब्लास्ट हो गया और मैडम जी की दाल बनने से पहले ही कुकर फट गया और दाल खाने का सारा प्लान मिर्ची में मिल गया। अगली खबर यह है कि मैडम जी अब बाजार में नया कुकर और नई दाल खरीदने जा रही हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, पटना के बाजार से। निक ने कहा, जस्ट फॉलो हर। ये बोलकर निक कॉल कट कर दिया। रॉन की बात से उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आलिया ने कहा, वैसे काफी अच्छी खबर दी है।
निक ने हामी भरते हुए कहा,
आलिया तुम घर पर बैठकर रॉन और उन सबकी लोकेशन ट्रेस करो। जैन, जाकर यही न्यूज इसी लैंग्वेज में ऑफिस तक पहुंचाओ। समझ गए ना कि क्या कहना चाहता था रॉन?
जैन ने कहा, जी भाई, ठीक है, मैं जन्नत बाजार चलता हूँ, वहाँ भी सब कुछ संभालना होगा। और अभी मैंने जो कहा वो बात याद रखना, एक तो ऐसे ही ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सेंसिटिव है, ऊपर से तुम दोनों।
आलिया ने कहा, भाई आप स्ट्रेस मत लो, हम देख लेंगे।
निक ने कहा, हाँ मुझे सब पता है, बस मेरे सामने नॉर्मल होने का ड्रामा करते हो दोनों और पीछे से झगड़ा करते हो, अब ये नहीं चलने वाला। फिर से झगड़ा किया तो हिडन कैमरा लगा दूंगा मैं घर में। जैन ने कहा, भाई आप भी ना, हम दोनों सिर्फ झगड़ा नहीं करते, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी स्पेंड करते हैं। अब क्या सब कुछ देखना है आपको? निक मुस्कुराते हुए नहीं कहा और वहां से चला गया। आलिया वहीं घर से उन सबकी लोकेशन का पता लगा रही थी तो जैन रॉन का मैसेज पहुंचाने के लिए एजेंसी के ऑफिस गया। दरअसल रॉन ये मैसेज देना चाहता था कि सुनहरी की डील कैंसिल हो चुकी है और वो पटना में दूसरी डील करने और कुछ नई लड़कियां खरीदने के लिए जा रही है। निक जन्नत बाजार पहुंचा तो वहां पर जन्नत बाजार सजने की तैयारियां हो रही थी। स्टार स्टार फुलवा जन्नत के जले पैर पर दवाई लगा रही थी। रूपाली वहां उन दोनों को डांट रही थी। वहां एक और लड़की थी जो जन्नत को डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर रही थी। फुलवा ने डरते हुए कहा, ताई आप देख रहे हो ना, दीदी का पैर जला हुआ है, वो कैसे घुंघरू बांधेगी और नाचेगी, आज आप किसी और को भेज दो ना। रूपाली ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुम दोनों अपना ड्रामा बंद करो, जन्नत घुंघरू भी बांधेगी और डांस भी करेगी। बोलते हुए उसने जन्नत का जला हुआ पैर दबाया और कहा, बोल नाचेगी ना। उसके ऐसा करने से जन्नत के मुंह से आह निकल गई। रूपाली ने उसका पैर छोड़ते हुए कहा, ज्यादा ड्रामा किया तो इस जले हुए पैर को और जला दूंगी। बोलते हुए उसने पास रखे घुंघरू लिए और जले हुए पैर पर बांधने लगी। ले बंध गए घुंघरू, चल अब जल्दी से तैयार हो और बाहर आ। जन्नत की आंखों में दर्द के मारे आंसू आ गए। फुलवा भी रूपाली के इस रूप को देखकर डर गई। रूपाली समझ गई कि उन दोनों के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है तो वो हंसते हुए वहां से चली गई। उसके साथ वो लड़की भी चली गई जो जन्नत को तैयार कर रही थी। फुलवा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी आप मत रोइए, मैं आपके पैर पर दवाई लगा दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। निक वहां पीछे की खिड़की के पास छुपकर सब कुछ सुन रहा था। जन्नत को रोते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ।
पता नहीं कब सुधरेगी ये रूपाली, बेचारी के जले हुए पैर के ऊपर घुंघरू बांध दिया। आलिया क्या कर दिया तुमने अपने बचपन में, निक ने अपने मन में कहा। क्या कर रही हो दोनों यहाँ पर, निक ने अंदर आते हुए कहा। जन्नत निक को देखकर खड़ी हो गई, दर्द से उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अरे बाठी रहो, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा, मैं चेक करूं तुम्हारा पैर, निक ने पूछा। जन्नत ने ना में सिर हिलाया और वहां रखी कुर्सी पर वापस बैठ गई। तुम मुझे अपने पास तो नहीं आने देती, देखो मैं सिर्फ दवाई लगाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। बोलते हुए निक ने जन्नत का पैर पकड़ा और कहा, लाओ इधर दो मुझे अपना पैर। अच्छा बताओ तुम क्या पहनोगी आज, फुलवा ने इशारा करते हुए कहा। वो वाले कपड़े, वो जो गुलाबी रंग का लहंगा है वो, निक ने उसके घुंघरू खोलते हुए कहा। तब तो बहुत सिंपल हो गया, एक काम करो ना, ये दूसरे वाले पैर में ही सारे घुंघरू बांध लो लेकिन थोड़ा ऊपर, और तुम्हारे लहंगे के नीचे वैसे भी किसी दिखने वाला है कि तुमने इन्हें कहाँ पहना है। अरे वाह दीदी, ये तो हमने सोचा ही नहीं, फुलवा ने खुश होकर कहा। लाओ तुम्हारे पैर में दवाई लगा देता हूँ, वैसे इतना भी नहीं जला था तुम्हारा, लेकिन उसने इतनी कसकर घुंघरू बांधे हैं कि सारे ब्लिस्टर्स फूट चुके हैं, तब शायद ज्यादा दर्द हो रहा होगा, निक ने दवाई लगाते हुए कहा। जन्नत ने अपने पैर पीछे करने की कोशिश की लेकिन निक ने उसे कसकर पकड़ रखा था। ऐसे ही रखो, उसने सख्ती से कहा। जन्नत के पैर में दवाई लगाते हुए वो प्रियल के बारे में सोचने लगा। ये भी बिल्कुल गुड़िया जितनी ही जिद्दी है, उसे भी अपने गुस्से में किसी की नहीं सुननी होती थी, और इसे भी, बस इन लड़कियों के घर वालों का पता चल जाए, उसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इन सबको यहाँ से निकालने में। भैया हम लोग जा रहे हैं बाहर, आप नहीं आओगे दीदी का डांस देखने, फुलवा ने पूछा। मुझे ये सब नहीं पसंद है, निक ने थोड़े गुस्से में जवाब दिया। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो, जन्नत ने इशारों से पूछा। मैं कौन हूँ क्या हूँ ये समझाना मैं जरूरी नहीं समझता, पर जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगी उसी दिन बात करेंगे, अब जाओ जाकर दिल बहलाओ सबका, निक ने गुस्से में जवाब दिया। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं ये सब अपनी खुशी से करती हूँ, जन्नत ने साइन लैंग्वेज में कहा। निक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जन्नत उससे नाराज होकर वहां से बाहर डांस करने के लिए चली गई। जन्नत के डांस के बाद वापस रोज की तरह सभी लड़कियां अपने अपने काम पर चली गईं। इन सब के बीच निक उनके कमरे में जाकर चुपके से उनका सामान देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहां कुछ खास नहीं मिला। निक को जन्नत बाजार में आए एक महीना हो चुका था। जन्नत बाजार की हवेली के रेनोवेशन का एक हिस्सा पूरा हो चुका था। इस बीच वे लोग ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए लेकिन सुनहरी की 3 से 4 डील कैंसिल हो चुकी थी। इस वजह से जन्नत बाजार बहुत ही घाटे में चल रहा था। मिस्टर मुखर्जी और रॉन के वहां होने से सुनहरी भी कुछ नहीं कर पाई और वापस जन्नत बाजार में लौट आई। निक के भड़काने से रूपाली के दिल में अब उसके लिए वो इज्जत नहीं थी जो पहले थी। रूपाली भले ही अब निक की टीम पर विश्वास करने लगी हो लेकिन अब सुनहरी को उनके बारे में कुछ खटकने लगा था। सुनहरी अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से बात कर रही थी। जब से मैं वापस आई हूँ रूपा कुछ बदल सा नहीं गई है, सीधे मुंह बात तक नहीं करती, पता नहीं क्यों पर अब इन साहब लोगों पर विश्वास करने का दिल नहीं करता। भले ही पैसे वाले होंगे और जन्नत बाजार पर काफी खर्चा भी किया है इन्होंने, अच्छे खासे पैसे भी देते रहते हैं, लेकिन जब से ये आए हैं तब से एक भी डील कामयाब नहीं हुई।
पता नहीं साला कहाँ से पुलिस पहुंच जाती है, और पता नहीं कौन सी अजीब सी पुलिस पहुंचती है जिनके आगे मंत्री भी काम नहीं आते साला। सबको यहाँ अपनी इज्जत की पड़ी है, लेकिन मजे सबको लूटने हैं। अब तो इन साहब लोगों से डील भी कैंसिल नहीं कर सकती, ऐसे ही पैसे नहीं आ रहे। फिर घर आई लड़की को ऐसे पैर से ठोकर मारना सही नहीं होगा। रूपाली दरवाजे पर खड़े होकर चुपके से सुनहरी की सारी बात सुन रही थी। उसकी आंखों में सुनहरी के लिए गुस्सा था, लेकिन फिर भी जन्नत बाजार के घाटे में चलने की बात सुनकर उसके दिमाग में एक विचार आया। इसी के साथ उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी।